सोमवार 18 मई की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन। फेडरल ट्रेजरर जिम चामर्स ने न्यूज पोल के उस नतीजे पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें ये सामने आया है कि लेबर का बजट 1993 के बाद से सबसे कम लोकप्रिय बजट रहा है। सर्वे के अनुसार 52% मतदाताओं का मानना है कि इस बजट से उनकी स्थिति और खराब होगी। ट्रेजरर ने आज ये भी घोषणा की है कि क्वींसलैंड के लोगों के लिए 50,000 घर उपलब्ध कराने की डील हुई है, जिनमें से 21,000 घर पहली बार घर खरीदने वालों के लिए आरक्षित होंगे। जिम चामर्स ने कहा है कि वो समझते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स डिस्काउंट और नेगेटिव गियरिंग में बदलाव को लेकर कुछ ऑस्ट्रेलियाई लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन उनका काम कठिन फैसले लेना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना घर मिल सके। बजट की लोकप्रियता कम होने के बावजूद न्यूज पोल में ये सामने आया है कि प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी लिबरल नेता एंगस टेलर की तुलना में पसंदीदा प्रधानमंत्री के तौर पर आगे हैं। सर्वे के अनुसार एंथनी एल्बनीजी को 46% समर्थन मिला जबकि एंगस टेलर को 38% समर्थन। वहीं सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड के लिए किए गए रिजॉल्व पोल जो रविवार को प्रकाशित हुआ उसमें अलग नतीजे सामने आए हैं। इस सर्वे में एंगस टेलर को थोड़ी बढ़त मिली है और वो 33% समर्थन के साथ एंथनी एल्बनीजी से आगे रहे, जबकि 37% लोगों का कहना है कि उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं किया है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने घरेलू हिंसा पर सख्त कार्रवाई के दौरान 4 दिनों में लगभग 1,000 लोगों को गिरफ्तार किया है और 94 हथियार जब्त किए हैं। बुधवार से शनिवार यानी 16 मई तक चले ऑपरेशन एमरोक के दौरान 2,063 चार्जेस लगाए गए, 299 अरेस्ट वारंट जारी किए गए और 391 घरेलू हिंसा सुरक्षा आदेशों के उल्लंघन दर्ज किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक 28 वर्षीय फेयरफील्ड निवासी भी शामिल है जिस पर एक महिला को बार बार चाकू मारने का आरोप है और एक 51 वर्षीय व्यक्ति भी जिस पर जानबूझकर गला दबाने का आरोप लगा है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने कहा है कि यह अभियान अपराधियों पर दबाव बढ़ाने के लिए चलाया गया था और चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति हिंसा, धमकी या कोअर्सिव कंट्रोल का उपयोग करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रोबोटिक्स रिसर्च लैबोरेटरी ने एक नई टेक्नोलॉजी पेश की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोट्स को खुद निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। CSIRO जो नेशनल साइंस एजेंसी है उसने ब्रिस्बेन में एक छोटा और एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर लॉन्च किया है जिसका नाम वेट्रा रखा गया है। ये टेक्नोलॉजी उन रोबोट्स के लिए बनाई गई है जो ऑटोनोमस काम करते हैं, जैसे माइन साइट्स, अंडर वाटर ऑपरेशंस और सोलार पैनल क्लीनिंग। ये रोबोट्स कुछ ही सेकंड में निर्णय ले सकेंगे और ये पूरी प्रोसेसिंग ऑस्ट्रेलियन सर्वर्स पर होगी। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया में AI डेटा सेंटर्स में बड़े निवेश किए हैं। साथ ही सेनेट ने इन डेटा सेंटर्स के प्रभाव को लेकर एक इंक्वायरी शुरू की है। न्यू साउथ वेल्स सरकार ने कहा है कि नो ग्राउंड एविक्शंस पर रोक लगाने वाले बड़े कानून सुधारों के एक साल बाद लाखों किराएदारों को ज्यादा स्थिरता और मानसिक शांति मिली है। राज्य सरकार ने ये बदलाव इसलिए किए थे ताकि हर साल हजारों किराएदारों को बिना किसी कारण के घर से निकाले जाने की समस्या को रोका जा सके। सिडनी में लगभग 2.3 मिलियन लोग किराए पर रहते हैं जो शहर की आधी से ज्यादा आबादी है। स्टेट हाउसिंग मिनिस्टर रोज जैक्सन ने कहा है कि ये सुधार जिनमें किराए में बढ़ोतरी पर सीमा और मकान मालिकों को भुगतान करने के फी फ्री तरीके शामिल हैं अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, हालांकि व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की पुष्टि नहीं की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इसराइल ईरान पर सैन्य हमले करने की योजना बना रहे हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे जल्द ही पीस डील की ओर बढ़ना चाहिए, वरना ईरान में कुछ भी नहीं बचेगा। वहीं ईरान की मीडिया के अनुसार स्थानीय लोग संभावित संघर्ष को लेकर तैयारी कर रहे हैं। और अब खबर भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर स्वीडन पहुंचे, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान भारत और स्वीडन ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, तकनीक, रक्षा और कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और स्वीडन के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसे और विस्तार दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों और मानव केंद्रित विकास पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 2018 में स्वीडन गए थे, जब पहली बार इंडिया नॉर्डिक समिट आयोजित की गई थी। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें, SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।